ఓం ఓం ఓం. విద్యారణ్యముని ద్వారా విరచిత్ పంచదశీ కా ప్రకరణ చల్ రహా హై. అభ్యాస్ కే లియే విశ్వాస్ లో తైరంతః కరుణం సర్వైర్ వృత్తిభేదేన తద్విధా మనో విమర్శ రూపం స్యాత్ బుద్ధి స్యాన్నిశ్చయాత్మికా రజోంసై పంచభిస్తేషాం ప్రమాత్ కర్మేంద్రియాణి తో వాక్ పాణి పాదపాయూపస్ స్థావిధానాని జగిరే తై సర్వహి సహితై ప్రాణో వృత్తిభేదాత్ సపంచధా ప్రాణోపానః సమానశ్చ ఉదాహ్నభ్యానౌ చతి పునః బుద్ధి కర్మేంద్రియ ప్రాణ పంచకైర్ మనసాధియా శరీరం సప్తదశభిః సూక్ష్మం తల్లింగముచ్యతే ప్రజ్ఞస్తత్రాభిమానేన తైజసత్వం ప్రపద్యతే. హిరణ్యగర్భతామీసస్ తయోర్వ్యష్టి సమస్థితా. తో ప్రసంగ చల్ రహా హై. ఆప్కే దో స్వరూప్ హై. ఏక్ స్వయంభూ స్వరూప్ హై. वो न कभी बना न कभी बिगड़ेगा. जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, वह आपका स्वयंभू स्वरूप है. वेदांत में आप ये ध्यान रखना कि ब्रह्म और आप एक हैं. आपका दूसरा स्वरूप है बना हुआ स्वरूप, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो बनता है वो बदलता है. आपका जो बना हुआ स्वरूप कैसे बना, तो बना हुआ स्वरूप का आपका तीन स्वरूप है. कल बता रहे थे, एक प्राज्ञ है जो मलिन सत्व में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा. मलिन सत्व का अर्थ अविद्या हो गई. मलिन सत्व में अर्थात अविद्या में ब्रह्म का जब प्रतिबिंब पड़ता है, मलिन सत्व अविद्या सहित प्रतिबिंब का नाम प्राज्ञ पड़ गया. वो आपका बना हुआ पहला स्वरूप है प्राज्ञ. जिसका बिना कुछ प्रयत्न किए अपने आप स्वतः सुसुप्ति अवस्था में स्पष्ट भान होता है, आपके प्रज्ञ स्वरूप का आपको स्पष्ट भान सुसुप्ति अवस्था में होता है। जागृत स्वप्न में प्राज्ञ का स्पष्ट भान नहीं होता, ईश्वर ने विचार किया ये प्राज्ञ बन तो गया लेकिन ये कमाकर खाने लायक नहीं बना, न कमा सकता है न खा सकता है। अपना भी नहीं खा सकता, अपने बाप का भी नहीं खा सकता। हम बचपन में गांव में रहते थे तो पहले यातायात की व्यवस्था नहीं थी दुर्गम गांव में, अभी भी नहीं है, तो यात्री पैदल ही यात्रा करते थे, दो दो दिन चार चार दिन पैदल यात्रा करो, तो बीच में कहीं पड़ाव हो, रात्रि के विश्राम करना हो तो सड़क के किनारे छोटे छोटे ढाबे बनते थे, उसी को गांव का होटल कहलाता है, तो वहीं रुकना है। तो कोई यात्री उस होटल में जाकर होटल मालिक से मालकिन से यदि कहे आज हमको तुम्हारे यहां एक रात रुकना है, तो कहते हैं हम होटल के मालिक और मालकिन ये पूछती थी ये पूछते थे कि तुम्हारी अपनी कमाई है कि बाप की कमाई है, पूछते थे आपकी कमाई है कि बाप की कमाई है। जो ये कहा उस यात्री ने कि मेरी अपनी कमाई है तो तुम्हारे लिए यहां जगह नहीं है। हाँ, और जिस यात्री ने ये कही कि मेरी बाप की कमाई है तो बोले वो तुम्हारे लिए पहला। क्यों महाराज? बोले अपनी कमाई वाला खर्च नहीं करेगा, खा पी के मौज नहीं करेगा, उसको पता है नहीं कि कमाई कैसे होती है, कितना मेहनत करना पड़ता है। जब उस यात्री ने कहा कि बाप की कमाई है तो उसको मतलब नहीं है, वो खूब खाएगा खूब पिएगा खूब मौज करेगा तो होटल की इनकम ज्यादा होगी, तो बाप के कमाई वाला तो खर्च ज्यादा करेगा, खुद की कमाई होगी तो बड़ा कंजूस करेगा। तो ये गांव की कहावत थी, हमको अभी याद आ गया। तो ये प्राज्ञ न खुद अपनी कमाई कर सकता है न बाप की कमाई खा सकता है। क्यों महाराज ऐसे लाचारी किस बात की? बोले इसके पास कर्म करने के कारण भी नहीं, भोगने के साधन भी नहीं। तब परमात्मा ने विचार किया कि इसको करने के साधन और भोगने के साधन उपकरण बना देनी चाहिए। तब उसने तम प्रदान प्रकृति है 19वें श्लोक के द्वारा ये शुरू हुई है। तम प्रदान प्रकृति तद्भोगा ईश्वराज्ञा, आज्ञा माने इच्छा, ईश्वर की इच्छा से तम प्रदान प्रकृति में से वियत पवन तेजो अंबु भूवो भूतानि जग्गिरे, आकाश वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूक्ष्म पंच महाभूतों की रचना की निर्माण किया। अब उनमें से परमात्मा ने क्या की, सत्वम सही उन जो सूक्ष्म पांच भूत हैं उनके प्रत्येक के सत्व अंश से पांच ज्ञानेन्द्रियों की निर्माण रचना की। स्पष्ट है श्लोक, आप समझ जाएंगे, प्रक्रिया आप समझ जाएंगे। आकाश के शुद्ध सत्वांश से श्रोत्रेन्द्रिय बनाई, वायु के सत्वांश से त्वचा इंद्रिय, तेज के सत्वांश से चक्षुर इंद्रिय, जल के सत्वांश से रसन इंद्रिय, पृथ्वी के सत्वांश से घ्राण इंद्रिय। इस प्रकार से पांच ज्ञानेन्द्रियों की उत्पत्ति परमात्मा के संकल्प से सूक्ष्म आकाशों में विद्यमान सत्वांश से हुई। इतनी मात्रा से प्राज्ञा कर्ता भोक्ता नहीं बन पाया, अधूरा साधन है, साधन अधूरे हैं। तैरंतःकरणं सर्वैः वृत्तिभेदेन तद्विधा। यहां पर थोड़ा ध्यान से समझ लेना, तेही माने उन्हीं आकाशादि सूक्ष्म महाभूतों में विद्यमान सत्वांश, सर्वैः सत्वांशैः, एक एक के सत्वांश से ज्ञान इंद्रियों की रचना की, सभी के सत्वांश को मिलाकर अंतःकरण की रचना की। वृत्ति भेदेन तद्विधा, काम करने के उपकरणों के भेद से वह अंतःकरण द्वि प्रकार का हो गया, दो प्रकार के हो गए। वृत्ति माने कार्य, कार्य भेद से अंतःकरण दो प्रकार के हो गए। उसी दो प्रकार को यहां दूसरे लाइन से बता रहे विद्यारण्य मुनि जी। विमर्शन रूपी कार्य करने वाला भाग को मन कहा। विमर्शन का अर्थ होता है कि विकल्प, संकल्प, विकल्प, उसी को यहां विमर्श कहा। विमर्श का अर्थ होता है किमिदम, इदंत्वेन ग्रहण कर रहा है लेकिन इदम को निश्चय नहीं कर पा रहा है, किमिदम। किसी भी वस्तु को पकड़ तो पा रहा है, समझ गए ना, किसी भी वस्तु को पकड़ तो पा रहा है लेकिन अपने द्वारा पकड़ी हुई वस्तु यही है करके निश्चय नहीं कर पा रहा है, उसको विमर्श कहते हैं। जैसे कभी कुछ मंदांधकार हो, दूर कोई वस्तु दिख रही है, वस्तु को वस्तु के रूप में देख तो रहा है, वो वस्तु को पकड़ता रहा है चक्षुर इंद्रिय, वस्तु ने वस्तु के रूप में तो देख लिया आंख ने, लेकिन वो दिखने वाला वस्तु क्या है निश्चय नहीं कर पा रहा है, दिख रहा है निश्चय नहीं हो पा रहा है, इसको विमर्श कहते हैं। इतना काम करे उस भाग को मन कहते हैं। मनो विमर्श रूपम स्यात्, फिर उसके बाद मन के द्वारा पकड़ी हुई वस्तु, उस वस्तु के बारे में विशेष रूप में निश्चय जो करे उसका नाम बुद्धि। पकड़े निश्चय न करे उसका नाम मन। मन के द्वारा पकड़े गए वस्तु को जिस समय यह यही है करके निश्चय कर देता है, अंतःकरण के उस भाग को बुद्धि कहते हैं। मन और बुद्धि में इतना अंतर है बस, वृत्ति भेद माने कार्य भेद। एक की अवस्था अनिश्चय की है, दूसरे की अवस्था निश्चय की है। दूर दिखने वाला वस्तु क्या है, गाय है कि भैंसी है, भैंस है कि घोड़ा है कि गधा है, दिख तो रहा है, इतना अंश मन का काम है। उसका ये भैंस ही है, गाय नहीं, घोड़ा नहीं, गधा नहीं, पक्का ये भैंस है, ये बुद्धि का काम। या भैंस नहीं, गधा नहीं, घोड़ा नहीं, गाय है, गाय को गाय के रूप में निश्चय करना, भैंस को भैंस के रूप में निश्चय करना, घोड़े को घोड़े के रूप में निश्चय करना, गधे को गधे के निश्चय रूप में करना, ये काम किसका है, बुद्धि का है। सबको पकड़ तो रहा है लेकिन निश्चय नहीं कर रहा है, ये काम किसका है, मन का है। वृत्ति भेदा तद्विधा, काम करने की अवस्था को लेकर अंतःकरण का ये दो भाग हो गए। अंतःकरण बना किससे, उपादान कारण, सूक्ष्म आकाशादि भूतों के, पांचों भूतों के मिले हुए सत्वगुण, अलग अलग सत्वगुण से अलग अलग ज्ञान इंद्रियां, सभी के मिले हुए सत्वगुण से अंतकरण, समझ गए ना। अब समझे चाहे नहीं समझे, हां कर दो, है ना। तो ये ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय मिले अंतकरण, दोनों सत्वगुण के कार्य है। लेकिन इतनी ज्ञान के बाहर के करण, ज्ञान के अंदर के करण, ये दो प्रकार के करणों की उत्पत्ति करने मात्र से भी प्रज्ञ कर्ता और भोक्ता नहीं बन सका, तब फिर परमात्मा ने बुद्धि लगाई कि और क्या करें। रजवंश ही पंचभिस्तेषां प्रमात् कर्मेन्द्रियाणि तु, वाक्पाणि पादपायूपस्थाभिधानानि जज्ञिरे। तेषां वही आकाशादि पांच सूक्ष्म भूतों में रहने वाले रजो अंश ही, समझ गए ना, क्योंकि त्रिगुणात्मिक प्रकृति, प्रकृति का जो तीसरा भाग तम प्रधान प्रकृति, तम प्रधान प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका, मूल प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो उसके सभी कार्य त्रिगुणात्मिका होंगे, समझे कि नहीं। मूल प्रकृति जब त्रिगुणात्मिका है, प्रधान कारण त्रिगुणात्मिका है, उसके सभी कार्य त्रिगुणात्मिका ही होंगे। तब प्रधान प्रकृति भी त्रिगुणात्मिका होने के कारण उसका कार्य आकाश आदि भी त्रिगुणात्मिक ही है, ध्यान देना। आकाश भी त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण रजगुण तमगुणात्मिक, वायु भी त्रिगुणात्मिका है, सत्वगुण रजगुण तमगुणात्मक, तेज भी त्रिगुणात्मिक है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, जल भी त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रजगुण तमगुण, पृथ्वी भी त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण रजोगुण तमगुण। सत्वगुण भाग से पांच ज्ञानेन्द्रिय और अंतकरण द्वया मन और बुद्धि, पांच दो सात वस्तु बन गए, बन गए ना। अब बचे रजोगुण। आकाश का जो रजोगुण है, सत्वगुण से श्रोत्रेन्द्रिय बनाया तो रजोगुण से क्या बनाया, वाक् बनाया। वाक् माने वाणी, जो मैं बोल रहा हूं इस समय, मैं बोल रहा हूं आकाश के रजोगुण के अंश से बना हुआ इंद्रिय से मैं बोल रहा हूं, और इस समय आप सुन रहे हो तो आकाश के सत्वगुण के अंश से बने हुए इंद्रिय से सुन रहे हैं। फर्क क्या है बोलो? आप दोनों आकाश के कार्य हैं, अंतर है, मैं प्रयोग कर रहा हूं रजोगुण के भाग से बने हुए यंत्र का, आप प्रयोग कर रहे हो सत्वगुण के अंश से बने हुए यंत्र का। यंत्र मैं यंत्र कह रहा हूं, है? मैं जो बोल रहा हूं बाकेन्द्रिय से, वो बाकेन्द्रिय आकाश के रजोगुण से बना है। आप जो सुन रहे हो शब्द, वह आकाश के शब्द गुण के सत्व गुण के अंश से बने हुए यंत्र से सुन रहे हैं। अब वाक् पाणी, दूसरा यंत्र क्या बनाया, पाणी। पाणी माने हाथ। आप लोगों ने ना समझी की अवस्था में पकड़ा था जिसको, समझदारी के बाद समय में थोड़ी पकड़ा था। अब कोई पकड़ा है तो पकड़ोगे, बोलो? तो पहले पकड़ लिया सो पकड़ लिया मूर्खता के समय में। अब कोई कहे तुम पकड़ लो, नहीं बाबा, भगवान बचाए, एक बार पकड़ी थी वो अभी रो रहे हैं, अब दोबारे नहीं पकड़ेंगे। तो क्या पकड़ा था? पानी, प्राणी, पानी ग्रहण बोलते हो ना, है? तो उसी को हिंदी भाषा में हाथ पकड़ना कहते हो, संस्कृत में पाणी कहते हैं और भाषा में हाथ कहते हो। हाथ आपने जो पकड़ा था वास्तव में हाथ पकड़ा था, गोलक पकड़ा था, इंद्रिय तो पकड़ा नहीं था। पानी माने इंद्रिय, किससे बना? वायु के रजोगुण से। किसी को जिसको पकड़ा आपने उसको छू कर जाना, ये वायु के सत्वांश से बना था, और जिसको छुआ है, जिससे पकड़ा है, ये दो चीजें हैं। जिससे पकड़ा है वह, जिससे छोया है वह, ये दो अलग अलग चीजें हैं। छूने वाला यंत्र त्वचेंद्रिय वायु के सत्वांश से बना, पकड़ने वाला यंत्र पानी वायु के रजोगुण के भाग से बना। वाक पानी पाद, पांव, पाद माने पांव, जिससे आप चलकर आए हो वो पांव को संस्कृत भाषा में पाद कहते हैं, वो कर्म इंद्रिय। तेज के रजो अंश से पाद बना। तो आप देखकर चले कि आंख बंद करके चले? जिस जगह को देखा वह तेज के सत्वांश से बना हुआ इंद्रिय से देखा, चक्षुर इंद्रिय। जगह देखने का काम किसका है? चक्षुर इंद्रिय का। वह चक्षुर इंद्रिय बना किससे? तेज के सत्वांश से। और जहां देखा वहां अपने पांव रखा, तो पांव जो जहां रखा वो पांव बना किसे? तेज के रजोंश से। इसीलिए तो लोग कहते हैं ना, देखकर चलना भाई। तालमेल है कि नहीं बोलो? देखने के साथ चलने का तालमेल है कि नहीं? देखने वाली इंद्रियां चक्षुर इंद्रिय, चलने वाली इंद्रिय पाद इंद्रिय, दोनों आकाश के सूक्ष्म भाग के क्रमशः सत्वांश से देखने वाली इंद्रिय, रजोंश से टेकने वाली यानी कर्म इंद्रिय पाद, जिसमें टेका जाए, जिससे टेका जाए। वाक पाणि पाद पायु क्रम से यहां पहले उपस्था आना चाहिए, लेकिन छंद मिलाने के लिए यहां पहले पायु को लिया। क्रम से आना चाहिए, क्रमात् शब्द में ऊपर प्रयोग किया है, क्रम शब्द से तो उपस्थ को पहले आना चाहिए था, लेकिन यहां प्रयोग करते समय पायु को पहले प्रयोग किया। व्याख्या करते समय में हम क्रम से ही व्याख्या करें तो उपस्थ माने मूत्र इंद्रिय, समझे कि नहीं? उपस्थ माने मूत्र इंद्रिय। ये जल का आपने बिल्कुल पानी नहीं पिया, कुछ भी रस ग्रहण नहीं किया तो कितने लीटर पेशाब करोगे? बोलो, जितना पानी पियोगे उतनी ज्यादा पेशाब करोगे, जितना कम पानी पियोगे उतनी कम पेशाब होगा। तो पानी पियोगे किससे? पानी का स्वाद पता चलेगा किससे? रसन इंद्रिय से। और पेशाब करोगे किससे? तो उपस्थ से। तो दोनों का तालमेल है। ज्यादा सूंघने से पेशाब ज्यादा आएगा कि ज्यादा पीने से पेशाब ज्यादा आएगा? तालमेल है कि नहीं, बोलो? है? रसन इंद्रिय का और उपस्थ इंद्रिय का तालमेल हो गया कि नहीं? लिक्विड का संबंध रसन इंद्रिय से है, और जितना लिक्विड ग्रहण करोगे उतना ही यूरिन पास होगा, उतनी ही पेशाब। तो ग्रहण करोगे रसन इंद्रिय से, परित्याग करोगे उपस्थ इंद्रिय से। किसका? रस का, जलीय पदार्थ का। तो रसन इंद्रिय बना जल के सत्व अंश से, और उपस्थ इंद्रिय बना जल के रजो अंश से। यह तालमेल है। अब इसी प्रकार से क्रमात् पायु को ले लो। पायु अर्थात गुदा इंद्रिय, जिससे हम मल परित्याग करते हैं, वो इंद्रिय, वो साधन। ये आकाश के ना पृथ्वी के सत्व अंश से घ्राण इंद्रिय बना, और पृथ्वी के रजो अंश से पायु इंद्रिय बना। तो इसमें इतना तालमेल नहीं दिखता है। क्योंकि अन्न ग्रहण नाक से नहीं होता। यदि सारे अन्न ग्रहण नाक से होता तो पायु से परित्याग करने का संबंध बनता। अन्न ग्रहण मुख से हो रहा है, अन्न का परित्याग किससे हो रहा है? पायु से हो रहा है। तो यहां जरा तालमेल नहीं दिखता। जैसे जल ग्रहण रसन इंद्रिय से हो रही है, और जल का परित्याग उपस्थ से है, यहां तालमेल है। जैसे रूप ग्रहण, स्थान का ग्रहण चक्षुर इंद्रिय से हो रहा है, और उसमें पांव रखने का काम पाद इंद्रिय के साथ हो रहा है, तालमेल है। इसी तरह जैसे बोलने का काम वाक् इंद्रिय से हुआ है, तो सुनने का काम श्रोत्र इंद्रिय से हो रहा है, तालमेल हो रहा है। मुख से बोले बिना कान से सुना नहीं जाएगा, कान सुनने को तैयार हुए बिना मुख से बोला नहीं जाएगा। तो इनका तालमेल दिखता है। लेकिन अन्न के ग्रहण और परित्याग के बीच में जरा तालमेल नहीं दिखता है। पृथ्वी के सत्व अंश का कार्य ग्रहण इंद्रिय, उससे केवल गंधक ग्रहण होता है, और पृथ्वी के रजो गुण का कार्य पायु इंद्रिय, उससे केवल गंधक का परित्याग होता, जैसे कि अपान वायु का परित्याग होता है। इतने अंश में तो तालमेल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, बोलो? है? इतने अंश में तो तालमेल दिख रहा है। वायु इंद्रिय से जो अपान वायु परित्याग होता है उसको जानने का साधन घ्राण इंद्रिय है। इतनी अंश में तो तालमेल दिख रहा है ना, लेकिन जहां तक मल त्याग की बात है, अन्न का जो स्थूल भाग है वो मल बनता है, तो अन्न को ग्रहण करने का काम नाक हो नहीं, जबकि वह जुब्बा है, कंठ है, तो अब इसको अर्थ करना ही है, तालमेल बिठाना ही है, तो खींचतान कर तालमेल बिठा लो, तो वो है सामंजस्य तो करनी है ना। तो नियम क्या है कि नाक से सूंघने के बाद सुगंध मधुर हुए बिना अन्न को ग्रहण किया नहीं जाएगा। तो वासना आती है भोजन में, क्या खाने से पहले क्या बढ़िया बना है, अब तालमेल ही तो बिठाना है ना, और क्या है, तालमेल बिठानी है ना। नाक जब भोजन के सुंदर सुंदर वासना ग्रहण कर लेता है तो खाने की इच्छा बन जाती है, तो खा लिया जाता है, तब सुबह फेंकने की इच्छा होती है ना। खाने में रुचि बढ़ाने वाला ग्रहण इंद्रिय बन गया, फेंकने में मदद करने वाला वायु इंद्रिय बन गया। इस तरह तालमेल बिठाकर पृथ्वी के सत्व अंश से ग्रहण इंद्रिय बना है और पृथ्वी के रजो अंश से वायु इंद्रिय बना है। इस तरह ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का निर्माण कर दिया। किसने? ईश्वराज्ञया। किसके लिए? तद्भोगाय, प्राज्ञ को कर्ता और भोक्ता बनाने के लिए। ध्यान देना ये शब्द, प्राज्ञ को कर्ता और भोक्ता बनाने के लिए परमात्मा ने तम प्रदान प्रकृति में से पांच सूक्ष्म भूतों को उत्पन्न किया, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। सूक्ष्म, सूक्ष्म का अर्थ तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। क्योंकि त्रिगुणात्मक प्रकृति का कार्य है, अतः ये पांचों सूक्ष्म भूतों में तीन गुण विद्यमान है। सत्व व्यष्टि यानी अलग अलग भूतों के अलग अलग सत्व अंश से पांच ज्ञान इंद्रिय बनाया। सभी भूतों के बचे कुचे सत्व अंश को मिलाकर अंतकरण बनाया। कई बार होता है ना, भोजन बनाते हैं और सबको खिला देते हैं, तो जिसमें भोजन बना था उसमें जितना निकाल सके निकालते गए और देते गए, और अचानक कोई आ गया व्यक्ति लास्ट में खाने के लिए, अब करछी से तो निकालने लायक तो कुछ बचा नहीं है, तो रसोईया क्या करता है, हाथ से पूछता है किसको, बर्तन को, जिस डेक्ची में भात पकाया था उसको हाथ से पूछने का, और जिस कढ़ाई में सब्जी पकाई थी उसको भी हाथ से पूछ पाछेगा तो कुछ तो निकलेगा कि नहीं, क्या निकलेगा, वही भात निकलेगा, वही सब्जी निकलेगी। तो करछी से अलग अलग निकाला तो व्यष्टि हो गया, हाथ से सबको समेटा तो समष्टि हो गया, यही ना है और क्या था। आकाश के सत्वगुण को, वायु के सत्वगुण को, तेज के सत्वगुण को, जल के सत्वगुण को, पृथ्वी के सत्वगुण को पूछ पाछ कर ली तो अंतकरण बन गया। इसको बोलते समष्टि सत्वगुण। इसी तरह आकाश के रजोगुण से हैं, वायु के रजोगुण से, तेज के रजोगुण से, जल के रजोगुण से, पृथ्वी के रजोगुण से पांच कर्म इंद्रिय बना। कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय में फर्क क्या है? रजो अंश से बने तो वो भाग कर्म इंद्रिय हो गए, सत्व अंश से बन गए तो वो भाग ज्ञान इंद्रिय बन गए। इतना फर्क है। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय ये दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसको पंगु अंधन न्याय प्रयोग किया जाता है। आप लोगों ने सुना है ना, पंगु और अंधन न्याय। ज्ञान इंद्रिया न हो तो अंधा, कर्म इंद्रिया न हो तो लंगड़ा। पंगु माने लंगड़ा, पंगुम लंगयते गिरिम, यत कृपा तमहम बंदे परमानंद माधवम, तुलसीदास जी ने लिख दिया है। परमात्मा की कृपा हो तो, पांव न हो तो भी वह पहाड़ चढ़ जाएगा, और परमात्मा की कृपा न हो तो पांव होने पर भी एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। तो पंगु अंधन्य है, क्योंकि कर्म करना र भोगना, भोगना र करना, जानना र करना, करना र जानना। इसलिए वेदांत की एक थियरी है, जानाति इच्छति यतते। पहले जानेगा, फिर उसके बाद इच्छा करेगा, फिर उसके बाद प्रयत्न करेगा। जानेगा ही नहीं तो इच्छा करेगा नहीं, और इच्छा ही नहीं करेगा तो प्रयत्न प्रवृत्त ही नहीं करेगा, प्रवृत्ति नहीं करेगा। तो जानाति इच्छति ये तते। तो ज्ञान इंद्रिय से जानाति, अंतकरण से इच्छति, कर्म इंद्रियों से यतते। तो तीन चीज बन गए, ज्ञान इंद्रिय, अंतकरण और कर्म इंद्रिय। इतनी मात्रा से भी प्राज्ञा कर्ता भोक्ता नहीं बन पाया तो परमात्मा ने फिर विचार किया, अब क्या कमी रह गई भाई। प्राज्ञ तो बन गया, प्राणी नहीं बना। प्राण के बिना प्राणी नहीं बनेगा, प्राण तो है ही नहीं, तब प्राण को भी बना देना पड़ेगा प्राणी बनाने के लिए। प्राज्ञ को प्राणी बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्राण बनाना पड़ेगा। तो प्राण किससे बनाए? तो परमात्मा ने विचार किया, जिस तरह रजोगुण को हमने पूछ पांच कर अंतकरण, सत्वगुण को पूछ पांच कर अंतकरण बनाया था, अब उन्हीं भूतों में रजोगुण, बचे हुए रजोगुणों को भी पूछ पांच करते हैं। आकाश के बचे हुए रजोगुण को पूछ लिया, वायु के पूछ पांच कर ली, तेज के पूछ पांच कर लिया, जल के पूछ पांच कर ली, और पृथ्वी के पूछ पांच किया, तो एक डल्ला बनाया, एक ढेला बना लिया। उस ढेले को पटक दिया तो पांच टुकड़े हो गए, ले जी है ना। चलो यही तो व्याख्या करने की शैली है ना, तो वही बता रहे हैं। तै सर्वै सहितै ही प्राणो, तेही माने पहले श्लोक में जिन भूतों के रजोगुण को प्रयोग किया था, उन्हीं भूतों के वही रजोगुणों के बचे पुचे अंश को सर्वै समष्टि रजोगुण, व्यष्टि रजोगुण से कर्मेंद्रियां, अलग अलग रजोगुणों से अलग अलग कर्मेंद्रियां, सभी के रजोगुण को मिलाकर प्राण बनाया। ये तो आपके प्राण किससे पैदा हुए हैं, आपके प्राण किससे पैदा हुए हैं, अपंचीकृत पंच महाभूतों के समष्टि रजोगुण के भाग से आपके प्राण बने हैं, उसको यहां संकेत कर रहे हैं विद्यारण्य मुनि जी। तई सर्वई सही तई प्राणो वृत्ति भेदात सपंचदा, सप्राण वृत्ति भेदात, शरीर में जाने के बाद, शरीर में प्रवेश होने के बाद ये प्राण पांच भाग में विभक्त होकर पांच प्रकार के कर्म करने लगता है, तब ये प्राण का पांच भेद हो जाते हैं। शरीर में प्रवेश जब तक नहीं करेंगे तब तक वो एक ही भेद रहेगा, एक ही प्रकार का रहेगा, खाली प्राण संज्ञा रहेगी। स्थूल शरीर में प्रवेश करने से पहले इसकी केवल प्राण ये संज्ञा रहे, लेकिन स्थूल शरीर में प्रवेश करते ही अलग अलग काम करने के लिए यह अलग अलग स्थान में बैठता है, तो अलग अलग स्थान में बैठकर अलग अलग काम करने के कारण इसका नाम भी अलग अलग पड़ गया। एक ही प्राण का शरीर के अलग अलग भाग में बैठकर, जिस जिस भाग में बैठकर जो जो काम कर रहा है उसका उसी अनुरूप अलग अलग नाम हो गया। क्या हुआ नाम? प्राणो अपान समानश्च उदानव्यान उच्चते पुनः, यही वृत्ति भेद है। और इस वृत्ति भेद माने कार्य भेद, काम करने के प्रक्रिया भेद से उस प्राण का पांच रूप बन जाते हैं और अलग अलग काम करता है। कौन प्राण कहां पर बैठकर किस नाम से कौन सा काम करता है, इसके बारे में कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।